हृदय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है और मस्तिष्क भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषों ने सारा बल मस्तिष्क पे दिया है और स्त्रियों ने सारा बल हृदय पे दिया है, और दोनों से मिला हुआ समाज रोज नष्ट होता चला गया है, क्योंकि ये दोनों ही बिंदु शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु नहीं। ये दोनों ही बहुत बात के विकास है, मनुष्य की जड़ें इनमें नहीं। और मनुष्य की जड़ों से मेरा क्या मतलब, जैसे पौधे की जड़ें होती हैं पृथ्वी में, उन्हीं जड़ों से वो जीवन और रस खींचता है, उसी से जीवित होता है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में किसी बिंदु पर वे जड़े हैं जो आत्मा से जीवन और रस खींचती हैं और जिनके कारण शरीर जीवित होता है। जिस दिन वे जड़ें शिथिल हो जाती हैं, शरीर समाप्त हो जाता है। भूमि में पौधे की जड़ें हैं, मनुष्य के शरीर की जड़ें आत्मा में प्रविष्ट है, लेकिन मस्तिष्क नहीं है वो जगह और ना ही हृदय वो जगह है जहां से मनुष्य प्राणों से जुड़ता है। और अगर हमें उन जड़ों का कोई पता ना हो तो हम कभी भी साधक के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। कहां है फिर मनुष्य की जड़ें, शायद आपके ख्याल में भी नहीं है। कुछ सीधी और सरल सी बातें भी अगर हजारों साल तक ध्यान से भूली रहे तो विस्मृत हो जाती। मां के पेट में बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो मां से वो किस जगह से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से या हृदय से? वो नाभि से जुड़ा होता है। जीवन की धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। हृदय भी बाद में विकसित होता है, मस्तिष्क भी बाद में विकसित होता है। मां की जीवन धारा उसे नाभि से उपलब्ध होती है। मां के शरीर में बच्चे की जड़ें नाभि से फैली होती है। न केवल दूसरे मां के शरीर में उसकी जड़ें नाभि से फैली होती हैं, बल्कि स्वयं के प्राणों में भी उसकी जड़ें नाभि से ही फैली होती हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है, उसके बाद हृदय विकसित होता है, उसके बाद मस्तिष्क विकसित होता है। ये बात की फैली हुई टहनियां हैं, इन पर फूल भी लगते हैं। मस्तिष्क पर ज्ञान के फूल लगते हैं, हृदय पर प्रेम के फूल लगते हैं। यही फूल हमें भुला लेते हैं और हमको लगता है कि यही फूल सब कुछ है, लेकिन जड़ें मनुष्य के शरीर की और प्राणों की नाभि में होती हैं। वहां कोई फूल नहीं लगते, वो बिल्कुल अदृश्य हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते। हृदय के तार बिल्कुल ढीले हैं, उनसे क्रोध ही पैदा होता है, उनसे विकृति ही पैदा होती, विसंगीत ही पैदा होता है, लेकिन उनसे कोई संगीत पैदा नहीं होता। मस्तिष्क के तार हैं बहुत खिंचे हुए, उनसे पागलपन पैदा होता है, और हृदय के तार हैं बिल्कुल ढीले, उनसे क्रोध, वैमनस्य, द्वेष, घृणा, ये सब पैदा होते। हृदय के तार थोड़े कसे हुए होना चाहिए ताकि उनसे प्रेम पैदा हो सके, और मस्तिष्क के तार थोड़े शिथिल होना चाहिए ताकि उनसे विवेक पैदा हो सके, विक्षिप्तता नहीं। और अगर ये दोनों तार ठीक संतुलन में आ जाएं, तो जीवन के संगीत की संभावना पैदा हो सकती है। तो हम दो बातों पर विचार करेंगे, एक तो कि मस्तिष्क के तार कैसे शिथिल किए जा सके, और हृदय के तार कैसे तीव्र किए जा सके, हृदय के तारों पर कैसे कसाव लाया जा सके और मस्तिष्क के तारों को कैसे शिथिल किया जा सके, कैसे रिलैक्स किया जा सके। इन दोनों बातों पर विचार करेंगे, और इन दोनों की जो साधना है उसको ही मैं ध्यान कहता हूं। इन दोनों की तरफ जो साधना है उसको ही मैं मेडिटेशन कहता हूं, उसे ही मैं ध्यान कहता हूं। और ये दोनों बातें अगर पैदा हो जाएं, तो फिर तीसरी बात पैदा हो सकती है, वो जो हमारा असली केंद्र है जीवन का नाभि, उस तक भी उतरना संभव है। इनमें संगीत पैदा हो जाए दोनों केंद्रों पर, तो भीतर गति हो सकती है। वो संगीत ही नाव बन जाता है हमें और गहरे ले जाने की। जितना संगीतपूर्ण होता है व्यक्तित्व, जितना भीतर संगीत पैदा होता है, उतने हम गहरे उतर सकते हैं। और जितना भीतर विसंगीत होता है,
उतना ही हम उथले रह जाते हैं, हम बाहर रह जाते हैं। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु नाभि है, वही केंद्र है। वो शरीर के मध्य में ही नहीं है नाभि, जीवन के भी मध्य में वही है। बच्चा पैदा भी उससे ही होता है और जीवन का अंत भी नाभि से ही होता है। और जो लोग जीवन के सत्य में प्रवेश करते हैं उनके लिए भी नाभि ही द्वार बनती है। और आज भी आपको ख्याल में नहीं होगा, दिन भर आप श्वास फेफड़ों से लेते हैं, लेकिन रात आपकी श्वास नाभि से चलनी शुरू हो जाती है। दिन भर आपका सीना उठता फैलता है, लेकिन रात जब आप सो जाते हैं आपका पेट उठने गिरने लगता है। छोटे बच्चों को आपने श्वास लेते देखा होगा, तो छोटे बच्चों का फेफड़ा ऊपर नहीं उठता, पेट ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। छोटे बच्चे अभी नाभि के ज्यादा करीब हैं, जैसे जैसे आदमी बड़ा होने लगता है वैसे वैसे उसकी श्वास ऊपर से वापस लौटने लगती है और नाभि तक उसके कंपन बंद हो जाते हैं। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं और एकदम से एक्सीडेंट की हालत आ जाए, तो आप हैरान होंगे, आपको पहली चोट नाभि पे लगेगी, न मस्तिष्क पे लगेगी, न हृदय पे लगेगी। अगर एक आदमी एकदम से आपके ऊपर छुरा लेके आ जाए, तो आपको पहला जो कंपन होगा वो नाभि पे होगा और कहीं भी नहीं होगा। अगर अभी भी आप घबरा जाए एकदम से, तो पहला कंपन नाभि पे होगा। जीवन पर जब भी संकट पैदा होता है तो नाभि पर पहले कंपन होते हैं, क्योंकि जीवन का केंद्र नाभि है और कहीं कंपन नहीं होते। जीवन के स्रोत वहां से जुड़े हैं, और चूंकि नाभि पर हमारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं रहा, इसलिए आदमी बिल्कुल ही अधर में लटका रह गया है। नाभि का केंद्र एकदम अस्वस्थ है, उस पर ध्यान ही नहीं है, उसके विकास की भी कोई व्यवस्था नहीं। जितना अभय बढ़ेगा उतनी नाभि मजबूत और पुष्ट होगी और जीवन से संबंध गहरे होंगे। इसलिए दुनिया के सारे महत्वपूर्ण साधकों ने अभय को, फियरलेसनेस को साधक का अनिवार्य गुण माना है। फियरलेसनेस का और कोई मूल्य नहीं है अभय का। अभय का मूल्य है वो नाभि के केंद्र को पूरा जीवंत कर देती, उसके सारे विकास को पूरा खुल के प्रकट कर देती। वो हम धीरे धीरे बात करेंगे। नाभि के केंद्र पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। मस्तिष्क के केंद्र से ध्यान को धीरे धीरे हटाना जरूरी है। हृदय के केंद्र से भी धीरे धीरे ध्यान को हटाना जरूरी है, ताकि वो नीचे और डीपर और डीपर और गहरे से गहरे में प्रवेश हो जाए। तो उसके लिए दो प्रयोग सुबह और रात्रि हम ध्यान के करेंगे। सुबह का प्रयोग मैं आपको समझाता हूं, फिर 15 मिनट के लिए हम उस प्रयोग के लिए बैठेंगे और उस प्रयोग को करेंगे। निश्चित ही अगर मस्तिष्क से चेतना को नीचे ले जाना है, तो मस्तिष्क को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना जरूरी है, रिलैक्स छोड़ देना जरूरी है। हम मस्तिष्क को खींचे रहते हैं पूरे वक्त, ख्याल ही भूल गया कि हम खींचे हुए चले जा रहे हैं, पूरा टेंस किए हुए हैं माइंड को, पूरा खींचे हुए, ये ख्याल में नहीं। तो पहले उसे शिथिल छोड़ देना जरूरी है। तो अभी हम जब ध्यान के लिए बैठेंगे, तो उसमें तीन बातें हैं। पहली बात, पूरे मस्तिष्क को बिल्कुल ऐसे शिथिल छोड़ देना है, इतना शांत और ढीला छोड़ देना है जैसे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि आपने शिथिल छोड़ दिया? आपको कैसे ख्याल में आएगा कि मैंने शिथिल छोड़ दिया? अगर मैं इस मुट्ठी को जोर से खींचूं, तो मुझे पता चलता है कि सारी नसें खींची हुई हैं। फिर मैं इसे ढीला छोड़ दूं, तो मुझे पता चलेगा कि सारी नसें ढीली छूट गई। और चूंकि हमारा मस्तिष्क पूरे वक्त ही खिंचा हुआ है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि खिंचा हुआ होना क्या है और ढीला हो जाना क्या है। तो एक काम करेंगे, पहले मस्तिष्क को जितना खींच सकेंगे खींच लेंगे, जितना मस्तिष्क की सारे स्नायुओं को खींच सके पूरा खींच लेंगे, जितना टेंस कर सके कर लेंगे, फिर एकदम से ढीला छोड़ेंगे। तो आपको पता चलेगा कि खींचा हुआ होना और ढीले होने में दोनों में क्या फर्क है। अभी जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो एक मिनट के लिए जितना मस्तिष्क को आप खींच सके, जितना तनाव दे सके उतना खींच लेंगे, और फिर मैं कहूंगा कि आप ढीला छोड़ दें, तो आप बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, और वो आपको पता चल जाएगा कि क्रमशः कैसा खिंचा होना क्या है और ढीला हो जाना क्या है। वो आपको फील होना चाहिए, वो आपको अनुभव में आ जाना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे आप ढीला और ढीला छोड़ने में समर्थ हो जाएंगे। तो पहला काम है मस्तिष्क को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, मस्तिष्क के साथ ही पूरे शरीर को भी ढीला छोड़ देना है। इतने आराम से बैठ जाना है जैसे शरीर पर भी कहीं कोई जोर ना पड़े, कहीं कोई भार ना पड़े। फिर आप क्या करेंगे, जैसे आप सब ढीला छोड़ देंगे, पक्षी बोल रहे हैं, ये कहीं पंचक्की की आवाज हो रही है, कहीं कोई कौवा बोलेगा, कहीं कोई और आवाज होगी, ये सब आवाजें आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मस्तिष्क जितना शिथिल होगा उतना सेंसिटिव हो जाएगा, उतना संवेदनशील हो जाएगा, एक एक चीज सुनाई पड़ने लगेगी, आपको अपनी हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ने लगेगी, श्वास का आना जाना भी सुनाई पड़ने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। फिर चुपचाप बैठ के ये सब चारों तरफ हो रहा है, उसे चुपचाप अनुभव करना है और कुछ भी नहीं करना। आवाज सुनाई पड़ रही उसे चुपचाप सुनना है, पक्षी बोलेगा उसे चुपचाप सुनना है, भीतर श्वास चल रही उसे चुपचाप देखते रहना है, और कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कुछ भी किया कि मस्तिष्क खिंचना शुरू हो जाएगा। आपको तो एक रिलैक्स्ड अवेयरनेस में, एक शिथिल जागरूकता में बैठे रहना, सब हो रहा है, आप चुपचाप सुन रहे हैं, और आप हैरान हो जाएंगे, जैसे ही आप शांति से सुनेंगे वैसे ही और गहरी शांति भीतर उतरनी शुरू हो जाएगी। जितने आप गहरी से सुनेंगे उतनी और गहराई भीतर बढ़ती चली जाएगी। एक 10 मिनट में ही आप पाएंगे कि आप एक शांति के अद्भुत केंद्र बन गए हैं, सारी चीज शांत हो गई है।